आर्यन ने आंखें खोली, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह अलग नहीं किया। उनके माथे अब भी एक दूसरे से टिके थे। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं, तेज, गर्म, थोड़ी बेकाबू। कमरे की हल्की रोशनी में अदिति का चेहरा बहुत पास था, इतना कि आर्यन उसकी पलकों की हल्की थरथराहट तक महसूस कर पा रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ अदिति की कमर से हटाया, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि उसे रुकना चाहिए, मगर दिल अभी भी उसी पल में अटका हुआ था। अदिति ने उसकी हिचकिचाहट महसूस की। उसने पीछे हटने के बजाय अपनी उंगलियां आर्यन की कॉलर के पास रख दीं, बस रख दीं, खींचा नहीं, दबाया नहीं, वो स्पर्श ही काफी था। उस एक हल्के से छूने में अधिकार भी था और भरोसा भी। आर्यन की सांस गहरी हो गई। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ जिस्मों की नज़दीकी नहीं थी, ये उस सारी दूरी का टूटना था जो महीनों से उनके बीच अनकहीं खड़ी थी। उसकी हथेलियां फिर से अदिति के कंधों तक आईं, इस बार और यकीन के साथ। अदिति ने उसकी छाती पर सिर टिकाया। उसकी सांसें आर्यन के दिल की धड़कन से टकरा रही थीं। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में मुस्कान छिपी थी। आर्यन ने हल्की सी हंसी छोड़ी, कांपती हुई। और तुम? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। अदिति ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब झिझक नहीं थी, बस खुलापन था। वो फिर से उसके पास आई, इस बार होठों को छूने से पहले एक पल रुकी, जैसे उसे मौका दे रही हो। आर्यन कहीं नहीं हटा। होंठ फिर मिले, इस बार पहले से ज्यादा गहरे एहसास के साथ, लेकिन उतने ही संयम में। उंगलियां आपस में उलझ गईं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेताबी नहीं, बस वो सुकून जो दो लोगों को तब मिलता है जब वे एक दूसरे से भागना छोड़ देते हैं। समय फिर से धीमा पड़ गया। ये कामुकता शोर नहीं कर रही थी, ये धीरे धीरे भीतर उतर रही थी। जब वे अलग हुए तो दोनों के चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। अतिथि ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो आर्यन। आर्यन ने खिड़की की ओर देखा, फिर उसकी तरफ, और पहली बार उसके चेहरे से वो चिंता की लकीर सच में मिट गई। अतिथि ने धीरे से खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर की हल्की सी आवाजें अब भी कमरे में आ रही थीं। उसने पर्दा ठीक किया और खिड़की बंद कर दी। कांच के बंद होते ही कमरे के भीतर एक और तरह की खामोशी उतर आई, ज्यादा निजी, ज्यादा सुरक्षित। वो पलटी। आर्यन अब भी वहीं खड़ा था, जैसे अभी अभी जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें अदिति पर ठहर गईं। अदिति बिना कुछ कहे बिस्तर की तरफ चली गई। वो उस पर बैठी नहीं, सीधे लेट गई, पीठ के बल। फिर उसने दोनों बाहें हल्के से फैला दी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई जोर नहीं, बस एक साफ सा इशारा। उसकी आंखें आर्यन से मिली। इधर आओ, उसने बहुत धीमे से कहा, लगभग फुसफुसाकर। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। उसके कदम अपने आप आगे बढ़े, लेकिन वो अब भी पूरी तरह पास नहीं आया। वो बिस्तर के पास खड़ा हो गया। अगर तुम नहीं चाहो, वो बोलने ही वाला था। अदिति ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात रोक दी। मैं चाहती हूं, उसने कहा, बस पास। आर्यन ने जूते उतारे और बिस्तर के किनारे बैठ गया। अदिति ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके बगल में लेट गया, थोड़ा संकोच के साथ। अदिति ने करवट लेकर अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसकी सांसें अब आर्यन की धड़कन के साथ तालमेल में थीं। आर्यन ने हिचकिचाते हुए अपनी बांह उसके चारों ओर रख दी। कमरे में कोई शब्द नहीं थे, बस दो दिल थे जो अब एक दूसरे के करीब बिना भागे, बिना डर के ठहर गए थे। अदिति उसके सीने से लगी हुई थी। आर्यन की धड़कन अब भी तेज थी, मगर अब उसमें घबराहट नहीं थी, बस एक भारी सी बेचैनी थी, जैसे भीतर कुछ दबा रह गया हो जो बाहर आना चाहता हो। वो छत की ओर देखते हुए चुपचाप लेटा रहा। आंखें खुली थीं, पर उसका मन कहीं बहुत पीछे चला गया था। अदिति ये चुप्पी पहचानती थी। उसने बिना कुछ पूछे अपना हाथ उसके सीने पर रखा, सीधे दिल के ऊपर। तुम फिर कहीं दूर चले गए हो, उसने बहुत धीमे से कहा, जैसे किसी पुराने जख्म को जोर से छूना न चाहती हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर अब संकोच नहीं था, उसकी जगह थकान और एक गहरी पुरानी उदासी थी। अदिति, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि सब ठीक था। अदिति का हाथ वहीं ठहरा रहा। मुझे पता है, उसने कहा, और अगर तुम कहना चाहो तो मैं सुनना चाहती हूँ पूरी बात। आर्यन ने गहरी सांस ली, आवाज हल्की सी कांपी, लेकिन वो रुका नहीं। मेरा एक प्यार था, उसने कहा। अदिति की उंगलियां जरा सी सख्त हुईं, मगर उसने हाथ नहीं हटाया। बहुत सच्चा, आर्यन बोला, इतना कि मुझे लगा था जिंदगी बस वहीं खत्म और वहीं शुरू होती है।
वो कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर एक दिन मैंने उसे ऐसे देखा, उसने धीमे से कहा, जहां मुझे नहीं देखना चाहिए था, किसी और के साथ, किसी ऐसे इंसान के करीब जिस पर मुझे आंख मूंद कर भरोसा था। कमरे में सन्नाटा उतर आया। अदिति ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में दर्द साफ था, पुराना, गहरा और आज भी अधूरा। उस दिन मैं टूट गया, आर्यन बोला। उसके बाद किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। आज जब तुम मेरे करीब आई, उसने कहा, तो मुझे डर लगा, इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि मैं फिर से कुछ महसूस कर रहा था। अदिति ने बिना कुछ कहे उसे अपने करीब खींच लिया। उसका सिर आर्यन की छाती पर था और उसकी बाहें उसे घेरे हुए थीं। तुमने सही किया, उसने बहुत नर्म आवाज में कहा, जो मुझे बताया। आर्यन ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा। उस स्पर्श में अब कोई उतावलापन नहीं था, बस सहारा था। मैं तुम्हारे पास आया, वो बोला, क्योंकि मुझे लगा सच बोले बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अदिति ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ सच्चा अपनापन। मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि तुम्हें छू सकूं, उसने कहा, मैं यहां हूं तुम्हें समझने के लिए। वो उसके और पास आ गई। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, मगर कोई जल्दबाजी भी नहीं। आर्यन ने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। मैं कमजोर हूं, उसने कहा। मेरे सामने हो, अदिति ने जवाब दिया, तो वो कमजोरी नहीं, भरोसा है। उसने उसके होंठों को बस हल्के से छुआ, एक एहसास भर, कोई गहराई नहीं, जैसे कह रही हो मैं यही हूं। आर्यन की आंखों से एक आंसू फिसल गया। अदिति ने उसे चुपचाप पोंछ दिया। वे दोनों वहीं लेटे रहे, उलझे नहीं बल्कि जुड़े हुए। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई जल्द फैसला नहीं लिया गया, बस दो लोग थे अपने अपने टूटे हिस्सों के साथ, एक दूसरे के करीब।